आज इस बरकत भरे दिन के लिए जो खुदावंद के जलाली और अब्दी नाम से हम शुरू कर रहे हैं और खुदावंद का शुक्र हो। मेरी तरफ से और मेरी बीवी की तरफ से आप सबको मसीह यीशु में आज की बरकतें और आप सब पर उसकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज का दिन बख्श दिया कि हम सब बाहम इकट्ठे हों। और खुदावंद के कलाम में आया कि जहां दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे होंगे वो वहां पर मौजूद होगा। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे विक्ट्री यानी कि फतह, उस फतह के बारे में जो यीशु मसीह में हर एक ईमानदार को हासिल है। फतह यानी कि किसी लड़ाई में किसी दुश्मन पर फतह पाना और उसे शिकस्त देना। जब ईमानदार अबलीस और उसकी सब रूहानी फौजों से लड़ाई करते हैं तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस हमें तीन बहुत ही खूबसूरत बातें सिखाती हैं। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे और सीखेंगे उस फतह के बारे में जो हमारे पास मौजूद है। वो फतह नहीं जो हमें मिलेगी या वो फतह नहीं या जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस फतह के बारे में जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद हमको मिलती है, उस फतह के बारे में जो खुदावंद ने हमें दी है और उसके बारे में आज हम सीखेंगे। आज हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में देखेंगे इन तीन बातों को जो मसीही जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। और ये तीन बातें हम इंग्लिश के तीन अल्फाजों से सीखेंगे, सिट वॉक स्टैंड। ये तीन बातें हैं जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और इन आने वाले दिनों में खुदा की मर्जी के मुताबिक हम इन पर बहुत गहरे से सीखेंगे। सिट, बाइबल मुकद्दस में जब हम इफिसियों के नाम पालूस रसूल के खत को देखते हैं तो पालूस रसूल के इस खत में इन तीन बातों को जब हम देखते हैं तो ईमानदारों की जिंदगी में इंतहाई जरूरी दर्जा रखती हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से इफिसियों की खत्मे से देखें, जब आप प्रस्तुत कर रहे थे तो जबूर 32 को मैं देख रहा था तो वहां पर खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, जबूर 32 उसकी छठी आयत में वो कहता है, जब वो अपने गुनाह का इकरार करता है और मान लेता है कि मैं गुनाहगार हूं और मेरा गुनाह दिन रात मुझ पर रहता है और वो कैसे गुनाह के साथ झगड़ता है, कैसे उसका गुनाह उसके ऊपर हावी रहता है। छठी आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, इसीलिए हर ध्यानदार तुझे से ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। खुदावंद का बंदा दाऊद इस बात को बयान करता है और कहता है कि यकीनन जब सलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा, तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुखों से बचाए रखेगा, तू मुझे रहाई के नगमों से घेरेगा। और यहां पर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं वो कहता है कि मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर है। बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे इफिसियों के खत में और यहां पर दाऊद खुदावंद का बंदा कहता है जो कुछ वो सीख रहा है और खुदावंद का कलाम खुदा बोलते हुए कहता है कि मैं तुझे तालीम दूंगा। सिट यानी के बैठ जाना। बाइबल मुकद्दस में खुदा के नापने का पैमाना ये है कि वो सब कुछ जानता है शुरू से आखिर तक, क्योंकि खुदा खुद मुख्तार है, खुदा की कुदरत कामल है, वो बड़ी ताकत रखता है और वो हर जगह मौजूद है। खुदा को हर चीज पर इख्तियार है और हर चीज को जानने की वो सलाहियत रखता है और कुल इलम रखता है। इफिसियों के खत में तीन बातों को जो पालूस उसूल बयान करता है, इन तीन बातों को हम सीखेंगे। सिट, वॉक, स्टैंड। सिट का मतलब है बैठ जाना, यानी कि किसी उस्ताद की शागिर्दगी में जेरे साया। और खुदावन का बंदा पालूस उसूल मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका पहला बाब। इससे पहले कि वो इस बात को शुरू करे, वो पहले बाब में इस बात को बयान करता है। पहला बाब उसकी 18वीं आयत से वो बयान करता है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसके मेराज की दौलत और उसके मेराज के जलाल की दौलत मकसों में कैसी कुछ है, और ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुदरत के तस्वीर के मुआफिक। यहां पर खुदावन का बंदा पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया को जब बता रहा है कि आप जो मसीह में फतेहमंद हो, आपको सबसे पहले जो बात सीखने की जरूरत है वो ये है, सिट डाउन, यानी कि बैठ जाने की जरूरत है। और मसीही जिंदगी चलने से शुरू नहीं होती, मसीही जिंदगी का आगाज बैठने से शुरू होता है। इस दुनिया में बहुत से ईमानदार जैसे ही वो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज आपको जो सिखाना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में मसीही जिंदगी चलने से नहीं बल्कि बैठने से शुरू होती है। और हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत सी मिसालें मिलती हैं, बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं जिसमें खुदावंद के लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो सिट डाउन, यानी कि उसके कदमों में बैठ जाना और उस्ताद के तौर पर उससे सीखना। ये मसीही जिंदगी का आगाज है कि खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के बाद उसे अपना रब्बी उस्ताद के तौर पर मानना और उससे सीखना कि कैसे चलना। और पालूस रसूल यहां पर दुआ करता है इफिसस की कलीसिया के लिए कि मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि तुम्हारे बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मेराज की दौलत मकसों के लिए कैसी कुछ बड़ी है। हमारी पोजीशन इन क्राइस्ट, यानी कि हमारा मकाम यीशु मसीह में क्या है। बहुत से लोग अपने मकाम को यीशु मसीह में नहीं पहचानते कि उनका दर हकीकत मकाम क्या है। जैसे ही कबूल करते हैं मसीह को, हमारा मकाम यह है, सबसे पहले हमारी खुदा तक रसाई होती है, यीशु मसीह के वसीला से हम उसके लेपालक बेटे हो जाते हैं, हम उसके दोस्त बन जाते हैं, हम उसके शागिर्द बन जाते हैं। जब हम अपनी हैसियत को, अपनी हालत को पहचानते हैं, इफिसियों के इस खत में हम देखेंगे कि किस तरह इफिसियों की कलीसिया को पालूस रसूल सिखाता है। पहले बाब से तीसरे बाब तक वो इसी बात को बताता है, कैसे बैठना है, यानी कि कैसे सीखना। और बैठने के लिए दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो अपने आप को खाकसार कर देना, किसी के मुतहत काम करना और उसकी मर्जी को पूरा करना, ये है सिट, यानी कि बैठ जाना। और जैसा कि पहले आपको बताया कि मसीही जिंदगी का आगाज या शुरू चलने से नहीं बल्कि बैठने से होता है। और इंसानी जिंदगी में भी सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो बैठना सीखता है, ना कि दौड़ना या चलना शुरू कर देता है। मसीही जिंदगी भी ऐसी ही है। और इसके बारे में खुदावन का बंदा पालूस रसूल हमें यूं सिखाता है, इफिसियों उसका दो बाप उसकी 6वीं आयत में वो यीशु मसीह में हमारी हालत को बयान करता है कि हमारी हालत क्या है, हमारा मुकाम, हमारा दर्जा क्या है। मेरे साथ निकाले इफिसियों दो बाप उसकी 6वीं आयत, और यहां पर खुदावन के कलाम में लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया, यहां पर वो उस बात को बयान करता है कि खुदा बाप के उस रहम की दौलत के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, जिसने हमारे कसूरों को माफ करके हमें मसीह में जिंदा किया और अपने फजल से हमें निजात बख्शी, और वो कहता है कि मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बैठाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। यहां से हम सीखते हैं कि हमारा जो पहला हालत है वो ये है कि बैठ जाना, अपने खुदावन को उस्ताद के तौर पर मानना और उसके जेरे नजर में सीखना। पिछले दिनों में मैं सोच रहा था कि खुदावंद जल्द से जल्द मुमकिन हो मैं पाकिस्तान में जाऊं और जाकर तालीम दूं, और खुदा के रूह ने कहा कि खामोश बैठ जा, पहले मुझसे सीख और फिर जाके सिखलाना। पहला जो स्टेप है वो हमारी जिंदगी में है सीखना, उसमें खुदावंद की मर्जी को जानना है, उसमें बाइबल की तालीम हासिल करना है, उसमें फरमाबरदारी, सबसे पहली बात फरमाबरदारी सीखनी है कि हम कैसे अपने खुदावंद के तालब हों, अपनी मर्जी को रद्द करना है और खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है। और ये है सिट। आज सिर्फ आपके साथ इन बातों को शेयर करूंगा, सिट क्या है, यानी कि खुदावंद की शगिर्दियत में बैठ जाना और उसको अपना उस्ताद और अपना मालिक मान लेना कि वो हमें सिखाए, और वाक चलना फिरना। मसीही जिंदगी तब ही हम चल सकते हैं जब हमारा ईमान मजबूत हो, जब हम बाइबल मुकद्दस के बारे में जानते हो और कोई हमसे पूछे तो हम अपने चलने फिरने से बता सकें कि हम रोशनी के फर्जंद हैं, हम नूर के फर्जंद हैं, ना कि तारीकी के फर्जंद हैं। और इसके लिए पालूस उसूल हमें वाक के लिहाज से वो सिखाता है, इफ़सियों उसका चार बाप उसकी पहली आयत में वो कहता है, पस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, मेरे साथ निकालें इफ़सियों चार बाप उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा, पस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। पालूस रसूल कैद में है और वो इस बात को जानता है कि वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन जब वो इस खत को इफिसस की कलीसिया को लिखता है रूम के कैदखाना से, तो वो उनकी हालत को बयान करता है कि सबसे पहले तुम्हें बैठने की जरूरत है, खुदावंद के बारे में जानने की, इलम रखने की जरूरत है ताकि तुम्हारा ईमान उस पर और ज्यादा मजबूत हो। और इसमें हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ खुदा की मर्जी और उसके रूह के वसीला से हम सीख सकते हैं, ना कि अपने नॉलेज के बायस जो दुनियावी तौर पर रखते हैं, ना अपने किसी और डिवाइस के बायस। सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में झुक जाना और बैठ जाना, जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप को हलीम करना, अपने आप को फरोतन करना, अपने आप को खाकसार बना देना और कहना कि मैं हाजिर हूं, यूहन्ना की तरह कि जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। और यहां से मसीही जिंदगी का आगाज होता है। मैंने बहुत सी जिंदगियों को देखा है कि वो चलना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं वो अपनी उस वाक को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद कमजोर होती है। मसीही जिंदगी में सबसे पहले हमारी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए ताकि हम सिट वाक स्टैंड चलने फिरने वाले यानी कि उसकी गवाही देने वाले बने, और उसके बाद स्टैंड यानी कि मुखालफ के उस सारे जलते हुए तीरों के मुखालफ खड़े हो सकें। और यहां पर वो कहता है जब कैदखाना में है, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से बुलाए गए थे उसके मुआफिक चाल चलो। चलना यानी के वो रास्ता जो सच्चाई की राह पर चलता हो, उस रास्ते पर चलना, और इस तरह चलना फिरना जिस तरह कोई टीम जब मुकाबले में जीतती है और वो खुशी के साथ बड़ी दलेरी के साथ इस बात का ऐलान करते हुए झूमते हुए चलते फिरते हैं कि उनकी فتح انہوں نے حاصل کی ہے اور یہ فتح ہمارے کسی نیک کام یا کسی طاقت یا قوت یا سمجھداری کے باعث نہیں بلکہ پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کو اس کی مفت بخشش یعنی کہ فضل کے باعث یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ آج بہت سے لوگ فتح کو رکھتے ہوئے سمجھتے نہیں، وہ مزری یعنی کہ محبت سے خالی، پریشان اور دکھوں کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں پہلا سٹیپ، پہلا قدم نہیں ہے سیٹ یعنی کہ بیٹھ جانا۔ اور پالوس رسول اسی بات کے بارے میں سکھاتا ہے، پہلے سیٹ پھر واک، یعنی کہ اس راہ پر چلنا جو سچائی کی طرف جاتی ہو، اور یا ایک فتح مند شخص کی مانند ٹہلنا پھرنا، یہ ہے مسیحی واک، اس کا پرچار کرنا۔ اور بہت سے ایماندار آج ہم بائبل مقدس میں اس تصویر کو دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تو اس کا چلنا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے جمپ لگا رہا ہے، چھلانگے لگا کر چل رہا ہے۔ ہمیں ایسے نہیں چلنا، ہمیں کیسے چلنا ہے؟ جس بلاوے سے بلائے گئے ہیں اس کے موافق چال چلنی ہے۔ سٹ، واک اینڈ سٹینڈ۔ سٹینڈ یعنی کہ افسیوں چھٹا باپ اس کی گیارہویں آیت کے مطابق روحانی جنگ کے لیے تیار ہونا، وہ جنگ نہیں جو انسانوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے یا خون اور گوشت کے ساتھ، نہیں بلکہ ابلیس کی ان ساری قوتوں کے خلاف، اس کی ساری شرارتوں کے خلاف اور اس کے جھوٹوں کے خلاف، اور سب سے بڑھ کر گلتیوں پانچ باب کے مطابق، گلتیوں پانچ باب کے مطابق کے جسم اور روح کی جو جنگ ہے اس سے لڑنا، جسم اور روح کی جنگ کو لڑنا، اور اس کے لیے ہمیں سٹینڈ ہونے کی ضرورت ہے، یعنی کہ پاؤں کے بل کھڑے ہو جانا، دوسرے لفظوں میں سچائی پر قائم رہنا اور مسیح میں اپنے ایمان پر قائم رہنا اور اس کی نمائندگی کرنا، یہ ہے سٹینڈ۔ یعنی کہ جھوٹ کے مقابلے میں سیدھی راہ اختیار کرنا، دنیا اور دنیاوی آزمائشوں کے سلسلہ وار مقابلہ میں کھڑے ہونا، اور اس کے بارے میں غلطیوں پانچ 16 سے ہم دیکھتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ ہمیں روح کے موافق اس کے آگے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ابلیس کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکیں۔ سٹ، واک اینڈ سٹینڈ، یہ تین باتیں مسیحی زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں۔ بہت سے لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں او میں نے یسوع پر ایمان لے آتا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں گواہی دوں۔ بائبل مقدس میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں آسمان پر سے قوت کا لباس نہ ملے، ٹھہرے رہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایمال اس کے پہلے ہی باپ میں کہ روح القدس نازل ہوا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور وہ تعلیم دینے لگے۔ وہ سب سے پہلے اس بات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے خداوند ان کی زندگی کے وسیلہ سے، بیٹھ جانا، اپنے آپ کو فروتن بنانا۔ اگر آج اپنی زندگی میں آپ کسی طرح کا دکھ، تکلیف، مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، ابلیس آپ کو ستا رہا ہے اور ابلیس آپ سے بہت سے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو بیٹھ جانے کی ضرورت ہے، خداوند کے حضور بیٹھ جانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نے زبور نویس میں دیکھا، وہ تجھے تعلیم دے گا، سکھاواں گا تینوں، وکھاواں گا راہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس راستے پہ چلے، وہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں سکھاؤں۔ اپنے منہ کو بند کر کے اس کے حضور بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں میں جا کے فلاں شہر میں، فلاں جگہ پر، فلاں لوگوں کو تیرے بارے میں بتاؤں۔ वो आपके जज्बात आत से, वो आपके दिल की ख्वाहिश से वाकिफ है। लेकिन जबूर 32 में हम देखते हैं, जैसे आपने खुदावंद की प्रस्तुश में उस जबूर को गाया, सिखावांगा तेनू वखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। क्या कहता है? मैं तुझे तालीम दूंगा। 7वीं आयत, 8वीं आयत के पहले हिस्से में वो कहता है जबूर, मैं तुझे तालीम दूंगा, यानी कि मेरे कदमों में बैठ जा, मैं तुझे सिखाऊंगा। और यहां पर दाऊद जो गुनाह के साथ लड़ाई लड़ रहा है, जो अपनी कमजोरियों में झगड़ रहा है, वो उसे सिखाना चाहता है, खुदा बाप उसे सिखाना चाहता है कि मैं तुझे सबसे पहले क्या करूंगा, तालीम दूंगा। मैं तुझे बताऊंगा कि मेरा फजल तेरे लिए क्या कर सकता है। फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे। सबसे पहले वो हमें इस बात के बारे में सिखाता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, अपने मुकाम को मुझ में पहचान। जैसे ही तू मुझ पर ईमान लाती है, ईमान लाता है, उस काम को जिसे तू करना है मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाप में क्या कहा, जब उसे सिरका पिलाया गया तो उसने पीकर कहा कि अब तमाम हुआ। जिस काम को हम करना चाहते हैं, वो काम खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम किया, और फतेहाबी का शादियाना बजाकर कहा कि तुम इस फतह में शरीक हो, तुम उस फतह के हकदार हो, जैसे ही मुझ पर ईमान लाते हो। हमें कुछ काम करने की नहीं, सबसे पहले उसके हजूर बैठने की जरूरत है। उस फतह को, फतह में खुशी मनाने की जरूरत है, उस फतह में जिंदगी बसर करने की जरूरत है। और बहुत से लोग वर्क प्रोग्राम जिसे कहते हैं, जिसे हम मजहबी प्रोग्राम कहते हैं कि नहीं, आप अगर चार अच्छी नेकियां करोगे, अच्छे काम करोगे, तो फिर खुदा के पसंदीदा ठहरोगे। नहीं, वो कहता है कि पहले मेरी मोहब्बत के बारे में सीखो कि मैंने तुमसे कैसी मोहब्बत की है। ईमानदारों को सबसे पहले मसीह में अपनी हालत जानने की जरूरत है, अपना मकाम जानने की जरूरत है कि वो फतामंद हैं, और फतामंद की तरह जिंदगी गुजारने के लिए पालूस रसूल सिखाता है, दाऊद नबी सिखाता है कि वो पहले मुझे तालीम देगा। और जिस राह पर चलना होगा, जिस राह पर हमें वाक करनी होगी, खुदावंद उसके बारे में हमें सिखाएगा। और वो कहता है कि मेरी नजर तुझ पर होगी, और वो नहीं चाहता कि हम घोड़ों खच्चरों की तरह, बेवकूफों की तरह दुनिया के लोगों के सामने बेइज्जत होते हों, और दुनिया के लोगों के सामने जब हमसे कोई बात करे तो साढ़े पादरी दसदे है कि यसु मसीह सलीब ते मरिया ते जीन उठया। नहीं, आज के इस दौर में ईमानदारों को सीखने की जरूरत है सबसे पहले बैठ जाना कि खुदा ने सलीब पर अपने बेटे की कुर्बानी देकर क्या किया। वो फतह दी है, और इस फतह को हमें खुशी से मनाने की जरूरत है। इस फतह के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, और यही मसीही जिंदगी का सबसे पहला कदम है जो हमने उठाना है। इफ़सियों 2 उसकी 6 आयत में उसने क्या किया, इफ़सियों 2 बाप उसकी 6 आयत मेरे साथ निकालें। वो कहता है कि मसीह में शामिल करके, यानी कि उसने यीशु मसीह में हमें शामिल करके उसके साथ जलाया, यानी कि मुर्दों में से जलाया उस गुनाह की आलूदगी को जो हमसे, हमारे अच्छे कामों से, हमारी किसी तरह की अच्छी बात से धुल नहीं सकते थे। उन सब को उसने जलाकर हमें आसमानी मकामों में उसके साथ बिठाया, हमें उसके साथ आसमानी मकामों में बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात, वो फतह मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। अगर आज आप किसी तरह के کشتی جو آپ کے اور آپ کی پرانی انسانیت کے درمیان ہو رہی ہے تو آپ کو بیٹھ جانے کی ضرورت ہے اور وہ خداوند آپ کو تعلیم دے گا اور اس کے لیے آپ کو خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنا ضرور ہے اور بائبل مقدس کو اپنی خوراک ہر روز جیسے بہت سے لوگ چائے کے بغیر اپنی صبح کو شروع نہیں کرتے بہت سے لوگ سگریٹ کے بغیر اپنی صبح کو شروع نہیں کرتے بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو کھانے سے پہلے اپنا دن نہیں شروع کرتے اسی طرح اپنے دن کی شروعات میں آپ کے اس بہت ہی اچھے نظام سے خوش ہوں جو خداوند نے شروع کیا کہ ہر صبح اس زندہ یہوہ کا نام آپ کے لبوں پر آتا ہے اور اس کے لیے خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا اور وہ دے رہا ہے. ہماری زندگی میں سب سے پہلے بیٹھ جانا اور اس کی حضوری میں سیکھنا ضروری ہے اور یہی مسیحی زندگی کا بہت اہم ترین حصہ ہے. اور سٹین کے لیے وہ چھ باپ اس کی افسیوں چھ باپ اس کی گیارہویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. ہم ابلیس کے منصوبوں کو ہرگز نہیں جان سکتے جب تک اس کے کلام سے ہماری واقفیت نہیں. ہمیں اس کی طرح سمارٹ اس سے بھی زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ اس سے پہلے میرے بھائیوں میرے بہنوں تم چلنا شروع کرو. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کس طرح چلیں. افسیوں پانچ باپ اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کیا کہتا ہے, پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو. یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیابان میں کس طرح ابلیس کا منہ توڑ جواب دیتا ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ سٹ ڈاؤن یعنی کہ بیٹھ جائیں اور اس کے بارے میں سیکھیں. اور کہتا ہے اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی طرح خدا کی نظر قربان کر دیا. محبت سے چلنے کی ضرورت ہے نہ کہ کسی غرور سے او میرے پاس یہ ڈگری ہے وہ ڈگری ہے. نہیں, خدا ہر ایک کے دل کو اور خدا سب کو جانتا ہے کہ وہ کس قدر عقل مند ہے. اس لیے ہم سب کو خدا کی مانت بننے کی ضرورت ہے یعنی کہ مائنڈ آف کرائسٹ یعنی کہ یسوع مسیح کی طرح ہمارا مجاز ہو اور ہم سیکھیں. اور خداوند یسوع مسیح ہمیں عبرانیوں پانچ باب میں بتاتا ہے. جب عبرانیوں کا مصنف اس بات کو لکھتا ہے تو اس نے کہا کہ باوجود وہ بیٹا ہونے کے اس نے دکھ سہ سہ کر فرما برداری سیکھی. ہمیں فرما برداری سیکھنے کے لیے آج اپنے غرور کو آج اپنے تکبر کو ہر طرح کے اس اونچی سوچ کو دور کر کے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے سٹ ڈاؤن اینڈ شٹ اپ یعنی کہ بیٹھ جانا اور اپنی منہ کو اور دوسرے لفظوں میں اپنی نہیں بلکہ اس کی آواز کو سننا. اور یہاں سے مسیحی زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے. مسیحی زندگی یہ نہیں کہ صرف ایمان لے آئے اور کرسمس کی خوشیاں منا لی ایسٹر کے دکھوں میں شریک ہو گئے اور ختم. نہیں, سٹ ڈاؤن یعنی کہ مسلسل اس کے بارے میں سیکھنا اور جب تک اس زمین پر ہیں اس کے لیے گواہی دینا. زمین پر ہی ہم گواہی دیں گے, آسمان پر کسی کو خوشخبری سنانے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان پر سب اس سے واقف ہوں گے سب اس کی حضوری میں اس کو جانتے ہوں گے. سب سے پہلے اس سے پہلے کہ واک شروع کریں سٹ ڈاؤن یعنی کہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے وعدوں کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے کیا کام صلیب پر فنش کیا ہے. اس نے کہا کہ تمام ہوا. اس فتح میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کیجئے اور آج اس دن سوچیں کہ آپ کس طرح چل رہے ہیں. بائبل مقدس کہتی ہے کہ نادانوں کی طرح نہ چلو بلکہ دناؤں کی مانت بنو. اور دنا لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے سیکھتے ہیں علم رکھتے ہیں. आपको अपने खुदावन मनजी के बारे में इलम रखने की जरूरत है। आए हम खुदावन के हजूर झुकें और अपने दिल की हालत का जायजा लें, क्योंकि उसने अपने कलाम में फरमाया, उनको जो अंधेरे में और मौत के साया में बैठे थे रोशनी बख्शी और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाला। वो हर एक ईमानदार को सलामती की राह पर डालता है। इससे पहले सिट डाउन एंड अपना मुंह बंद करके उसके हजूर कहें कि खुदा बाप, मैं तेरी हजूरी में आता हूं, मैं तुझसे इल्तमास करता हूं, मैं तुझसे इल्तमास करती हूं कि मुझे सिखा कि मेरी जिंदगी किस डगर पर है और मुझे किस तरफ जाना है। उसका वादा है, सिखावांगा तेनू वखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। खुदा बाप, इन सुनने वाले तमाम बहन भाइयों पर तेरा कुदरत और जोर वाला हाथ चाहता हूं। और आज जो कुछ हमने सीखा है कि हम अपनी जिंदगी में अपने मुकाम को जाने के जो फतह तूने हमें दी है उसे हम किस तरह खुशी के साथ मनाएं और तेरे बेटे के गवाह बने और अबलीस के जलते हुए तीरों को बुझा सकें और इस टॉपिक को और ज्यादा गहरे तौर पर सीखें। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमेन।